أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور موقع دیا. ہر دن کا موقع ہمارے حق میں ایک حجت بھی ہے اور ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی پیاری نعمت قرآن کی دی ہے، ہم اس کا حق ادا کر کے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے شروع بھی کریں گے اور یہ دعا کریں گے کہ کسی قسم کا کوئی رخنا، کوئی رکاوٹ نہ آئے. بالکل اس وقت اپنے آپ کو ایسے محسوس کیجئے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. جیسے ہم نماز میں ہر چیز سے بے نیاز ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی فارم میں آتے ہیں، تو آپ سب بھی جو بھی یہاں ہیں، گھروں میں ہیں، کوئی ان کو دیکھ رہا ہے، کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دور قرآن 2025، DQ 2025. آج ہم اس کا پارہ نمبر 29 تبارک الذی کریں گے. خوبصورت پارہ ہے، ایک سے ایک پارہ کسی بھی لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح اپنی مثال آپ ہے. ہر پارے کے ساتھ یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت پارہ ہے. آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ ہر پارے کے اندر سے ہمیں اپنے لیے جیمز اینڈ جیولز ملتے ہیں. تو پچھلا پارہ 28 پارہ، چلیے سب سے پہلے پارے کے ساتھ رب. پچھلے پارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے تھے، پروفٹ ایٹ ہوم. اور ہر صورت کے اندر کسی نہ کسی عورت کا تذکرہ تھا یا بیوی بچوں کی محبت تھی. خاص طور پہ خاطب بن ابی بلتا کا واقعہ ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے انہوں نے مشرکین مکہ کو ایک خط لکھ دیا تھا صرف اس سوچ کے ساتھ کہ اگر جنگ ہوئی تو ان کے بچوں کو کچھ نہ کہے. اور یہی بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے بہت سارے کام صرف اپنے گھر والوں کی وجہ سے آگے پیچھے ہوتے ہیں. کوئی کہے نہ کہے، لیکن ہم اپنے دلوں دماغ میں اس طرح سے محسوس کر لیتے ہیں. تو تقریباً 3 سے زیادہ دفعہ یہ میسج تھا اس بارے میں کہ دیکھو، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں. کہیں کہا کہ وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، کسی وقت آیا کہ وہ تمہاری آزمائش ہے. لیکن یہ سارا کچھ سننے کے باوجود بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ان کو چھوڑ دو، بلکہ معافی کے 4 لفظ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کر کے کہا کہ ان کے ساتھ بچتے بچاتے اپنا معاملہ رکھو. اور جتنا زیادہ آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے گھر سے متعلق ہے. گھر والے سپورٹ نہ کریں تو ہم یہاں کیسے ہوں؟ گھر والے اگر ہمیں فیسیلیٹیٹ نہ کریں تو ہم روزی روٹی کھانے پکانے کی چیزوں سے بے نیاز کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہاں ایک دفعہ اپنے دل کی اندر جھانک کر بولیے، الحمدللہ ہی علی نعمت الگھر. بولیے، اللہ کا لاکھ شکر ہے گھر کی نعمت پہ، اور پھر گھر والے بھی. گھر والے جو اللہ نے آپ کے میرے نصیب میں رکھے، چاہے وہ بچپن میں بھائی بہن اور ماں باپ تھے، اور بعد کے جو دوسرے رشتے ہمارے جڑے وہ تھے، لیکن یہ مان لیجئے کہ ہر ایک اللہ کا فیصلہ ہے. کوئی بھی انسان پازیٹیو تھنکر صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ جو وہ اپنے گھر والوں کو ان کی خوبیوں اور ان کی خامیوں کے ساتھ قبول کرتا ہے. وہ جو شادی کے موقع پہ 3 دفعہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، وہ کیا تھا؟ اللہ کا حکم، سنت تھی. ایک دفعہ آپ نے قبولیت کی کہ یہ رشتہ منظور ہے، دوسری دفعہ آپ نے کہا قبول ہے، ان کی ساری خامیاں قبول ہیں، اور تیسری دفعہ آپ نے کہا ان کی ساری خوبیاں قبول ہیں. یعنی ایک انالوجی دے رہی ہوں، اب یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، ایک آپ کو فیلر دے رہی ہوں. اس وقت جب قبولیت کے لفظ بولتا ہے انسان، تو اس وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہر بندہ مختلف ہے. لوگ غلط نہیں ہوتے، مختلف ہوتے ہیں. خاص طور پہ جب گھر بنتا ہے تو اس میں تو بالکل ہی کبھی کبھی 2 خاندان ہی فرق ہوتے ہیں، کبھی تو لینگویج ڈفرینس ہوتا ہے، کبھی ملک ہی دوسرا ہوتا ہے. تو اس وقت پھر بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ایک دوسرے کو سمجھا جائے. تو پچھلا پورا پارا مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کو سمجھنے میں مدد دے گیا ہوگا. آپ نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریوائز کیا ہوگا کہ وہ میرے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں، اچھا میں کیا کرتی ہوں، میرا خیال ہے میری بھی کوئی غلطی ہے. کیونکہ ہر وقت ہی دوسرے کو غلط کہتے رہنا نا، یہ بھی درست نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میں کوئی خامی نہ ہو، और ये कभी नहीं हो सकता कि आपके घर वालों में कोई खूबी ना हो, इवन आपके बच्चे। हाँ, आप उनको डिफरेंट एंगल से देखेंगी ना, तो एक बच्चे की जो चीज़ आपको खामी दिख रही है ना, मिसाल है कि एक बच्चा बड़ा सुस्त है, ढीला सा है, अब आप उसके बारे में, ये ढीला है, दूसरा बड़ा तेज है, ये सुस्त है, वो एक्टिव है, वो चुस्त है, ये है, लेकिन आप देखिए जो ढीला ढाला है ना, वो आपको ज्यादा बॉदर नहीं करता, लेकिन जो बहुत एक्टिव है, जो बहुत ज़हनी तौर पे शार्प है, वो हर वक्त आपके लिए क्वेश्चन मार्क बना रहता है, वो आपके ऊपर कई दफ़ा तनकीद करता होगा। तो बिल्कुल जब भी किसी बंदे से आपकी डीलिंग हो, ये मैं आप सब बहनों को एक खुश रहने का राज दे रही हूँ, क्योंकि आप घर नहीं तोड़ सकते। हमने उसमें एक थीम रखा था, घर टूटने ना पाए, नंबर एक, पहले से ही सोच समझ कर फैसले करें माँ बाप, और अगर उसमें आपकी को मर्जी शामिल थी तो आप भी उसी के अंदर उनको बताइए कि भाई हम ये चाहते हैं और हमारा ये इरादा है। दूसरी बात है, जब हो जाए, नंबर एक, दीन की कमी बर्दाश्त नहीं करनी, यानी मुशरिक के घर चला गया कोई, चली गई, दोनों को मैं तो डील करती हूँ, औरत है या मर्द है, आप दोनों को देख लीजिए, दीन पे नो कॉम्प्रोमाइज, अकीदे पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तौहीद और शिर्क के फर्क पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कबाइल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसकी इसलाह की फौरन कोशिश की जाएगी। लेकिन जहां बात होगी आदतों की, तौर तवार की, ये तौलिया गीला बेड पे रख देते हैं, ये अपने जूते इधर उधर फेंक देते हैं, फिर इनकी अलमारी बिखरी रहे, तो बिखरी आप ठीक कर दें, नहीं ठीक होंगे वो, मान लीजिए अब नहीं होंगे, होना होता तो शादी के 1 साल के अंदर हो चुके होते हैं, कि जितना मियाँ शादी के 1 साल के अंदर बीवी की बात मानते हैं, उतनी बाकी पूरे 20-25 साल नहीं मानते, उसमें बना लेते, नहीं माना नहीं मानेंगे, सीधी सी बात, एक्सेप्टेड। आप अपने घर को खराब होने से बचाना है, आप पहले ही एक्सपेक्ट किया करें कि ये गीला तौलिया बेड पे ही रखेंगे और मैंने ही उठाना है, और मैं रोज उठकर एक ताना दे भी दूंगी ना, तो फायदा कोई नहीं होगा बल्कि बदमजगी होगी। आप मुंतजी रहा करें कि उन्होंने ये रखा है, जो ही वो रखे आप उठाइए और उसको बाहर डाल दीजिए, इस पे शुक्र करें। अच्छा, शुक्र किस बात पे करें कि उन्होंने गीला तौलिया रखा है, गीला जूता नहीं बेड पे रख दिया, ऐसे भी तो हो सकते थे ना। बस ये है आपका मेरा घर, घर इसी से ही बचते हैं, पता नहीं वो कितना सब्र करते होंगे आपके साथ, कभी आपने सोचा भी नहीं है। बिलीव मी, आप खवातीन हैं, मैं भी औरत हूँ, हम सब एक ही जैसी हैं, कई दफ़ा हम खवातीन में कुछ ऐसी मुस्तकिल आदत होती हैं कि मर्द फिर उसके बाद कहते हैं अब कौन इसको कहे, छोड़ दो, सब्र कर रहे हैं वो भी, उनको आने पे रोटी मिल रही है, चलो कुछ नहीं, ढूंढ ढांड के मिल ही जाता है ना जूता घर के बिखरे हुए सामान में, इट्स ओके, घर बनने दो, अब इस उम्र में कहाँ जाऊंगा, तो बस लिव एंड लेट टू लिव। अब आगे चलते हैं पिछले पारे के बाद, अब इस पारे पे जो हम आने वाले हैं, पारा नंबर 29, इसका बुनियादी थीम क्या है, दावत इलाल्लाह, रब्बानी रहनुमाई। जब घर में सुकून होगा तो दावत इलाल्लाह का काम आप पुरसकून होके करेंगे, और जब भी दावत इलाल्लाह का काम करने के लिए निकलें तो उस वक्त आपके सामने क्या होगा, नंबर एक, तरीक़ाकार। पूरे पारे पे एक नज़र डालें तो आप हैरान हो जाएंगे, मैं तो हर साल हैरान होती भी हूँ और कोशिश करती हूँ बताऊँ, यानी अगर मैं इस वक्त आपको पारा नंबर 29 का एक मोटा सा तायराना व्यू दूँ ना, जैसे बर्ड आई व्यू, तो इसमें हम सबसे पहले सूरत मुल्क पढ़ेंगे, ये आपको तौहीद सिखाती है, अगली सूरत कलम पढ़ेंगे जो आपको रिसाला सिखाती है, यानी सबसे पहले दावत इल्लाह में लोगों को अल्लाह से जोड़िए, अल्लाह का मुकाम दीजिए, अल्लाह कौन है, अल्लाह ने क्या किया, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम दीजिए, क्योंकि उनके मुकाम को समझे बगैर बात नहीं बनती। तीसरी सूरत इसमें अलहाका आएगी, ये ईमान बिलाखिरा, यानी ये तीन वो मजमून हैं जो 13 साल तक मक्का में पढ़ाए गए, कोई अगली चीज आने ही नहीं दी, नमाज, रोजा, हज, जकात, सूद, शराब की हुरमत, ये सब मदनी दौर में आया। आज हमारा मसला क्या है कि हम अपने साथ रहने वालों और अपने इर्द गिर्द वालों की इन तीन चीजों को इतना अहम नहीं समझते जितना हम उनके सिगरेट पीने को अहम समझ रहे हैं, जितना उनकी नेल पॉलिश वाली नमाज को समझ रहे हैं, या कुछ और। मैं नहीं कहती कि ये छोटी बातें हैं, लेकिन जब जड़ ही ना हो तो पौधा कैसे लगेगा, जब जड़ ही कटी हो तो ऊपर ग्रो कैसे होगा। तो आज से अपने इर्द गिर्द लोगों को जज करने से ज्यादा ये देखिए कि अल्लाह का तसव्वुर है ज़हन में, बच्चों को अल्लाह की मोहब्बत दे दे, नमाजें खुद ही ठीक हो जाएंगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम जिंदगी में आ जाए, बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि सुन्नत सुन्नत कह के कोई चीजें छोड़ दे, फिर तो वो सहाबा की तरह अपने सर रखना चाहेंगे जहाँ नबी के कदम रखे थे, और ईमान बिल आखिरा ना हो तो आपके शौहर क्या देख रहे हैं, फोन पे नहीं देख रहे, बच्चे क्या देख रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकती ना। आप कैमरे लगाकर अपने शौहर की कोई चीजों को चेक कर सकती हैं ना बच्चों की। आगे चलते हैं, सूरत अल हाका के बाद सूरत अल मारिज है। ये करेक्टर बिल्डिंग है, यानी आपको इस वक्त मैं क्या दे रही हूँ, दावत इल्लाह का रब्बानी तरीकेकार। तरतीब इस बारे की इतनी हसीन है कि वाकई लगता है फर्स्ट कम फर्स्ट। पहले लोगों को अल्लाह की मार्फत होगी, उसके बाद उनको रसूल का मुकाम समझ आएगा, और उसके बाद फिर वो जब मरने के बाद अपने साथ होने वाले मामला को समझेंगे तो अंदर की दुनिया तो ठीक हो गई। उसके बाद सूरत मारिज में करेक्टर बिल्डिंग है। कुरान पाक में हमने डिफरेंट जगह पे ना पैकेजेस पढ़े हैं, जैसे मिसाल है कद अफलह अल मोमिनून में एक पूरा पैकेज है, इसी तरह सूरह बनी इसराइल की आयतों में थी वकदा रब्बु का अल्लाह तो अब, बिल्कुल इसी तरह का एक पैकेज सूरत मारिज में हमें मिलने वाला है, जिसमें बताया गया कि क्या खूबियां हों तो वो बंदा जन्नत में जाएगा। फिर उसके बाद सूरत नूह आती है, जो आपको एक दाईये दीन से मिलाती है, जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 950 साल तक अल्लाह का पैगाम दिया, और उस पैगाम के अंदर आप देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने उनको क्या कामयाबी दी। आपके एक दिन की क्लास के लोगों का अशरे अशीर भी नहीं है, वो अशरे अशीर भी नहीं है जो हजरत नूह की 950 साल की जिंदगी के बाद मिले, और अगर हिसाब लगाए ना तकरीबन 12.5 साल बाद एक शख्स उनके दीन पे आया है। इतना हौसला मेरा आपका नहीं है, हमारी तो हौसले बड़े छोटे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सूरत मुल्क में अल्लाह ताला की सिफात हैं, 30 आयतें हैं, हर रात को अल्लाह के नबी पढ़ते थे। डोमिनियन किंगडम, अल्लाह की बादशाहत की बातें हैं, कि जब रात को सोओगे तो आखिरी बात जो वो अल्लाह की मार्फत की सुन के जाओगे, तो देखना कि तुम्हारे लिए रात भर भी और सुबह उठकर अगले दिन अल्लाह की बात को मानना आसान हो जाएगा। तो उसमें मौत व हयात का क्या मकसद है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जो लोग आंखें बंद करके दूसरों के पीछे चल रहे होते हैं, उनको बताया जा रहा है के बकालु लो कुन्ना नस्मउ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी असहाबिस सई, जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा करके बताया जा रहा है। और ये सारी चीजें आयतों में आएगी। सूरत कलम के अंदर आप देखिए कि मुशरिकीन मक्का जो अल्लाह के नबी को रद्द करते थे, बोली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन, दुश्मनाने दीन का जिक्र है उसमें, बाग वालों का किस्सा है, अल्लाह के नबी की हिफाजत अल्लाह का जिम्मा है। वहीं यकादुल्लज़ीना कफरु लयुज़लिकूना कभी अबसारिम, अपनी नजरों से नबी को ताड़ते थे ताकि किसी तरह उनको उनके मकसद से हटा दें। सूरत अल हाका को आप देख लें तो क्यामत बरहक है, अहले जन्नत और अहले जहन्नम का तस्कर है। फिर उसी के बीच में कुरान अल्लाह की किताब है और इमामुल अंबिया की नबूवत की हकानियत है। सूरत मारिज में जू ही आप देखते हैं चढ़ने वाले ऊपर वाली चीज, ये तीसरी आयत में मौजूद है, साल साइलुम बिअज़ाब वाक़ि लिल काफिरीन लैस लहू दाफ़े मिन अल्लाह ज़िल मारिज। तो इसमें क़यामत की हौलनाकियों और अहले जन्नत की सिफ़ात है। सूरत नूह तो पूरी की पूरी हज़रत नूह की रिसालत और कौम को दावत और उनका जवाब। आगे सूरत चलती है, नेक्स्ट देखिए तो सूरत जिन्न है। कुछ जिन्नात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से कुरान सुना, कब, जब आप ताइफ से वापस आ रहे थे और अल्लाह ताला ने उनको एक जगह पर जिन्नात से मुलाकात कराई। उधर से कुछ लोग जो अल्लाह के नबी का पैगाम सुनकर गए या आपको लेकर गए साथ, क्या हुआ, उस पूरे वाक़े को जिन्नात ने एक किस्से की सूरत में जो अपनी कौम को पेश किया, ये है सूरत जिन, जिसमें बताया जा रहा है कि इल्मे गैब अल्लाह की ज़ात के लिए। अच्छा, अब यहाँ तक रिप बन गया आपका, यानी कि जिन्नात ने दावा कर दी शुरू, दावत इल्लाह का काम कब शुरू किया, जब उनको बात समझ आ गई। अब इसके फौरन बाद सूरत मुज़म्मिल है, कुमिल लैला इल्ला कलीला, इसमें क़यामुल लैल की बातें हैं, रात की नींद छोड़कर रब के लिए खड़ा हो जाना। चादर ओढ़ने वाले को कहा जा रहा है कि चादर में लिपटने वाले सरा बाहर निकल और थोड़ी रात अल्लाह की इबादत भी कर लीजिए, अल्लाह के इस दीन को देखिए। तहज्जुद नबी पे फर्जियत थी उसकी, उसकी बात है। फिर बाद में तहज्जुद को रिलैक्सेशन के साथ कर दिया गया और इसमें अल्लाह के नबी को एक पैगाम दिया। ये शुरू दौर की सूरतें हैं कि जिसमें कहा गया कि अब आराम के दिन गए, काम के दिन है, रात को अल्लाह के सामने खड़े होकर उससे थोड़ी सी डायरेक्शंस ले लीजिए, इंस्ट्रक्शंस लीजिए, क्योंकि इन नाशियत लैली अशद दुवतम वक्वा मुकीला। आप चाहते हैं कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरता तो आपको इसकी प्लानिंग रात को करने की जरूरत है। रात को अल्लाह से ताल्लुक कायम कर दे, उसके फौरन पर सूरह मुद्दसिर है, वहां क़यामुल लैल है, इधर क़यामुन नहार है। कौम फानजर, जो मुजम्मिल का मतलब था वही मुद्दसिर का मतलब है, यानी फ़राइज़ ख़ातमुल अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसमें वो आजमाइश थी जो मुस्तकिल सुन्नत थी। और एक सुन्नत जो आपको इंशाल्लाह तीसरे बारे में मिलेगी, उसका हिंट है बस, इसमें ये कह देती हूँ, और आज बहुत सारों ने वो छोड़ी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया था कौम फानजर, इंजार, आपके इस दुनिया में आने का मकसद भटकी हुई इंसानियत को हिदायत की तरफ बुलाना है, फिर इसमें कुफार की आजमाइश जानों में जाने की वजह, और उसके बाद सूरत क़यामत, जिसमें क़यामत सुग़रा और क़यामत कुबरा इकट्ठी कर दी गई, यानी एक हर इंसान की इनफरादी मौत क़यामत सुग़रा और एक क़यामत कुबरा, पूरी कायनात जब ख़त्म कर दी जाएगी, उसी में कुरान की हिफाजत की बात करके इंसान को उसकी असल दिखा दी गई कि अलम या को नुतफ़ तुम मनी यमुना, और फिर उसके बाद सूरत दाहर सारी जन्नत से जुड़ी हुई है। वो लोग जो आज दुनिया में अब्दुल्ला बने, कल उनको अल्लाह ताला अपना मेहमान बनाएगा। पूरी सूरत दाहर में जो गालिब चीज़ है वो जन्नत जन्नत जन्नत, यहाँ तक भी आता है कि जन्नत की नेमतों को सुनकर इसमें कोई सहाबी थे वो बेहोश भी हो गए, और उसमें भी कुरान पाक का तस्कर, हर सूरत के एंड पे आप देखेंगे कुरान की बात है कि कुरान एक नसीहत और आखिरी सूरत पारे की मुरसलात जहन्नुम जहन्नुम जहन्नुम। ये था एक दावा पैकेज कि अल्लाह ताला कैसे कुरान को जोड़ता है। अब एक लम्हे में बगैर सोचे और तवज्जो इधर भटक रहे, इधर उठ के गए, उधर गए, दिमाग कहीं, दिल कहीं, अच्छा ये भी कर लूं, फिर नहीं समझ आता कुरान। तो जैसे अल्लाह की ज़ात शिर्क से मुबर्रा है, पाक है ना, इसी तरह अल्लाह ताला का ये कलाम भी शिर्क से पाक है। आप अपनी ज़िंदगी का ख़ास तौर पे वो वक्त जिस वक्त कुरान खोल कर आप बैठे हों उसको अल्लाह के लिए खालिस कर दिया करें, यही चीज़ दिन ब दिन आगे बढ़ेगी और आपकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह वाली होगी। वो जुमला यहाँ भी लिख लीजिए, हम 24 घंटे हालत नमाज में नहीं रह सकते, हाँ कैफियत नमाज में रह सकते, और नमाज की कैफियत खुशू है। तो ये चीज़ें आपको मुझे किसने दी, हम तक कैसे पहुंची, अल्लाह ने दी रसूल के ज़रिए। आप मोहब्बत से पढ़िए दुरूद शरीफ, और ऐसा दुरूद शरीफ हो कि जो आपके दिल के तारों को हिला दे कि इस हस्ती ने जिसने ये प्यारा कलाम हमें दिया, इस वक्त तो आपको एक अपने जैसे इंसान की ज़ुबान से मिल रहा है, लेकिन आया कहाँ से, दिया किसने। तो आइए मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा सल्लई ताला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा बारक ताला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सिराज मुनीरा, वो हस्ती जिसने वक्त के गलत तकाजों का शिकवा करने की बजाय, तुम भी खराब, तुम भी खराब, ये भी खराब, वो भी खराब, 360 बुत तुमने रख लिए, तुम बेटियों को जिंदा दरगोर करते हो, तुम ये करते, ऐसी कोई नेगेटिव लैंग्वेज आपको प्यारे नबी से नहीं मिलती। बस क्या किया, लिख लें, अंधेरों का शिकवा करने से बेहतर है कि अपने अपने हिस्से का चिराग जला लिया जाए। ये काम किया था प्यारे नबी ने। हम मोहम्मद अरबी में देख रहे हैं कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जब आम होने लगी, दुश्मनों को खौफ होने लगा, सारी चीज़ें ट्राई करने के बावजूद थम किया, ये कुछ अबू तालिब के पास जाकर समझौते करने की ख्वाहिशात करने के बावजूद देखा कि नहीं, ये पैगाम रुक रहा, तो टॉर्चर पे आ गए। इस वक्त हम जो दौर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, मसाइब अलाम परेशानियों का दौर। कैसे हमने पीछे पढ़ा कि उमर बिन जासिर, हजरत सुमैया, और इसी तरह से उनके शौहर जो थे जासिर, उनकी जान ली गई दुख और तकलीफ़ों में डालकर। इसी तरह से जो गरीब लोग थे बेचारे, उनको तो ज़्यादा ही सताया जा रहा था क्योंकि गुलाम थे बेचारे। इन्हीं जवानों में एक शख्स हजरत हब्बाब थे। अब इनके किस्से सुनते वक्त ज़रा सा अपने आप को आप लोग चेक करवाएं और करें, और मैं भी खुद को, हम किस बात का रोना रोते हैं, हमारे पास क्या कमी है। जरा सी कोई 19-20 हो जाए, हम कहते हैं हमसे ज्यादा बड़ी आजमाइश में कोई नहीं। हाय, जो मेरे पे आजमाइश आई वो किसी पे नहीं आई होगी। इधर हब्बाब की बात सुनिए, ये उम्मे अनमार नाम की एक औरत के गुलाम थे। उम्मे अनमार रोज लोहे की सुलाखें गर्म करती, इमेजिन करें, और इनके सर पर रख देती। अल्लाह अकबर कबीरा। आप कहने में और सुनने में फर्क है, रोटी पकाते हुए जरा सा इधर जल जाए ना हाथ, तो कितने दिन तक उसका निशान नहीं जाता। चाय की कैटल के अंदर से भाप पड़ जाए तो छाला पड़ जाता है। आप सोचिए, इन लोगों के दिलों पे नहीं छाले पड़े। हम कहते हैं मेरा दिल जल गया, कोई जला होता? वो दिल जला जला कोई नहीं होता, बस हमें लग रहा होता, लेकिन असल में हाथ जल जाए, उंगली जल जाए तो तकलीफ है। क्या इनको दर्द नहीं होती थी? क्या इनका ईमान उस वक्त इनको रोकता नहीं होगा? क्या इन पे शैतान नहीं आता होगा? और ये नहीं, कितने ही और थे जिन पर गली गली कूचा कूचा जुल्म सितम हो रहा था। हज ये कि एक दिन कोयले दहकाए गए और इस पे चित लटा दिए, चित मीन सीधा लटा दिया इनको ऐसे, और इस साल में कि कोयले ठंडे हो गए लेकिन इनको उठने ना दिया। और इसकी ताप न लाकर हजरत हबाब बिन अरद ने इन बेदर्दियों की फरियाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, जो रहमत आलम थे, अल्लाह के नबी मता नसरुल्ला, अल्लाह के नबी मदद कब आएगी? उस पे अल्लाह के नबी ने दुआ की कि या अल्लाह खबाब की मदद फरमा। अल्लाह के नबी की दुआ हो रद्द हो जाए, ये नहीं होता। अल्लाह के नबी की दुआ रंग लाई और उम्मे इनमार के सर में को बीमारी हुई। हकीमों ने इसका इलाज किया और आपको पता है कि इलाज क्या बताया? गर्म सलाखों से सर को दागा जाए, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। हजरत खबाब लोहे की सुलाहें गर्म करते और फिर उससे उसका सर दागते। अल्लाह को बदले लेने आते। इसी तरह एक मारूफ जवान जो हमारे सबके दिलों में रहते हैं, हजरत बिलाल रजी अल्लाह हो, हबशा के रहने वाले थे और खल्फ के बेटे उमैया के गुलाम थे। उमैया इनका खाना पानी बंद कर देता, फिर जब भूख प्यास से वो बेकरार हो जाते और ठीक दोपहर हो जाती तो वो तपती हुई चट्टानों पर इन्हें चित लटा देता और छाती पर भारी पत्थर रखवा कर कहता, या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए का साथ छोड़ दो और लात और उज्जा को पूजो, वरना इसी तरह एड़ियां रगड़ते रहो। और हजरत बिलाल ये सारे मजालिम सहते रहे और उस वक्त इनकी जुबान मुबारक पर यही अल्फाज होते थे, अहद अहद अहद, एक है बस एक है। क्यों अहद क्यों कहते थे? उलमा कहते हैं कि बिलाल सिर्फ अहद क्यों कहते थे, और भी तो नाम थे। इसलिए कि मुशरिकीने मक्का को लफ्ज अहद से जितना गुस्सा आता था उतना किसी और से नहीं आता था। और क्या उनको दर्द नहीं होती थी? जरा सोचिए ना, अभी आपने सुना हबाब की बात, अब बिलाल की सुन लीजिए कि इनको भी पत्थरों पर लिटाते, इनको घसीटते, गले में रस्सी डालकर वो बादशाहों को दे देते कि जाओ इसको मक्के की पहाड़ियों पे ऐसे फेरो जैसे जानवरों को कोई फिराता है। क्यों दर्द क्यों नहीं होता था? ईमान क्यों नहीं छोड़ा? ये मजबूर नहीं थे, इनकी मजबूरियां नहीं थी। लिखिए, वो तो ईमान के नशे में चूर थे, और वो नशा ऐसा ना था जो इन तलखियों से उतर जाता। डॉक्टर ऑपरेशन से पहले इन्हें स्थीजिया दे देते हैं, उसके बाद चाहे दिल भी काट के खोल के बाहर रख दें तो मरीज को नहीं पता चलता। और अगर वही काम बगैर बेहोश किए करें तो हो सकता है दर्द की शिद्दत से मरीज मर जाए। ये जो एनेस्थीजिया है ना मेडिकली जो देते हैं, ये हल्का था, सहाबा के ईमान का एनेस्थीजिया इससे बहुत ज्यादा था। आप इसको एक मिसाल से समझ लें, आप काम कर रही हैं और आपके फेवरेट गेस्ट आ रहे हैं, मैके से आ रहे हैं, कोई आपकी फ्रेंड्स है, कितनी दफा उंगली पे कट लगता है, प्याज लहसुन छीलते काटते पता ही नहीं चलता। वो सारी दर्दें उठती हैं जब रात बिस्तर पे लेटते हैं, हाँ यहाँ भी कटता तो यहाँ भी, जो हो जोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आज अभी तक हमारी जंजीरें नहीं कटी, इसीलिए हमारे लिए आना मुश्किल है, इसीलिए हमारे लिए कमिट करना मुश्किल होता है। आज उम्मत मुस्लिम अल्लाह के नबी की चुनी हुई उम्मत, लेकिन आज हमारे लिए दावत इल्लाह का काम आसान ही नहीं है। और दावत का काम शुरू होता है खुद सीखने से। जब मुझे आता ही कोई नहीं तो मैं सिखाऊंगी क्या? मुझे पता ही नहीं अल्लाह कौन है, रसूल का क्या मुकाम है, तो मैं दूसरों को कैसे जाके दावत दूं, किसी गैर मुस्लिम के साथ जाके बात क्या करूं? चार लफ्ज बोलेंगे उसके बाद उसने एक ऐसा सवाल करना है आप चुप हो जाएंगे। आज लाखों की तादाद में वेस्ट में मुसलमान है, शायद इससे भी ज्यादा होंगे, क्यों नहीं दावत देते? एक तो एहसास नहीं है, दूसरी बात है वक्त नहीं है, कमा रहे हैं, तीसरी बात है देनी नहीं आती, चौथी बात है दीन का अपने भी नहीं पता। जो दे रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन मेजोरिटी इस वक्त सिर्फ एक ही पैगाम दे रही है पूरे वेस्ट को कि दुनिया दुनिया दुनिया, जिस दुनिया के तुम पीछे भाग रहे हो हम भी उसी के लिए आए हैं, हम तुम्हारे डॉलर तुम्हारे नोटों तुम्हारे पाउंड्स और क्रोन यूरोस के लिए बैठे हैं, प्लीज हमें कुछ ना, तुम जो कहोगे हम करेंगे, और वी लिक द शूज दैट किक्स अस, हम उन्हीं जूतों को चाटते हैं जो हमें ठुड्डे मारते हैं, सिर्फ भीगी बिल्लियां बनकर बैठे हैं क्योंकि पैसा है, पैसा है, स्टैंडर्ड है, बच्चे बाहर नहीं जा सकते, बच्चे बाहर जाएंगे ये हो जाएगा, यानी बाहर से मुराद जाए कि इस मुल्क से बाहर चले गए, हाय कैसे कमाएंगे, हाय वहाँ गंदी है, ये है वो, यानी आज जो दावत इल्लल्ला था ना, ये दूसरे पारे और 29वें का रब्त भी लिख लीजिए, एक जुमला दूसरे पारे के शुरू में कहता वो कजालिका जालनाकुम उम्मतम वसता, आज सेकंड लास्ट में वही पैगाम है कि तुम दावत अल्लाह का काम करोगे कि नहीं, ये उम्मत और ज्यादा भी ठोकरों में जाएगी, ये बात मेरी लिख के रख लीजिए, अनलेस ये दावत अल्लाह के फरीजे को अंजाम ना देगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब सीरत तो आपके सामने है, और आपको खुशी की बात बताती हूँ कि दौरे कुरान तो पूरा हो जाएगा एक दिन में, लेकिन ये मोहम्मद अरबी और अखलाक हसना ये हमारा रमजान के अंत तक चलता रहेगा, सब कुछ आपको अनाउंस करेंगे, लेकिन इस वक्त ये समझिए कि उस वक्त बिलाल की कैफियत क्या होगी। आपको पता है कि बिलाल की माँ भी मुसलमान हो चुकी थी लेकिन उन्होंने अपना ईमान छुपाया हुआ था, और उमैया इतना मारता बिलाल को, इतना मारता कि मार मार के खुद थक जाता और इनको कुछ ना होता। एक दिन इनकी माँ को कहने लगा अपने बेटे को समझा ले, मार खा 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 के खत्म हो जाएगा मुझसे। माँ ने बेटे को तन्हाई में कहा बेटा तू क्यों मार खाता है, अल्लाह को तेरा पता है, तू जुबान से जो ये कहते हैं कह दे, तू दिल में रख। तो बिलाल मुस्कुराए, माँ ने कहा इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है, कहने लगे आज मुझे पता चला कि उमैया हार गया और मैं जीत गया हूँ। कहा वो कैसे, कहा अगर ऐसा ना होता तो कभी मेरी माँ को सिफारशी बना के सामने ना करता। उनके ईमान और हमारे ईमान में बहुत फर्क, ये 19-20 का फर्क नहीं है, सॉरी ये सिल्वर ग्रे का फर्क नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा फर्क है, ये बाकी कह सकते हैं स्याह और सफेद का फर्क है, हम तो वो हैं ही नहीं, तब भी तो हमें आज ये कितनी बातें समझ ही नहीं आती दीन की, और हमारे अंदर वो कमिटमेंट ही नहीं, पूरा कुरान अंदर चला गया हमारे, एक तरह का एक पारा रह गया बस, अब एक पारा, बिल्कुल जैसे इंडिया में डाल डाल के ऊपर की उतनी सी जगह खाली है कि उधर और 2 चमचे डाल दो तो बंद करना पड़ेगा, आप मैं और इस वक्त यहाँ खड़े हैं, हर एक मेरे समेत पूछे ये दौरे कुरान मुझे आपको क्या देखे गया, अंदर हलचल मची, अंदर कोई उबाल उठ रहे हैं, अंदर कोई जोश उठ रहे हैं जो बिलाल के उठते थे, और उनकी जो आजमाइशें थी वो तो फिजिकल थी, हमें यहाँ कर एक हाथ कोई लगा दे अल्लाह ना करे दीन के नाम पे, यहाँ तो अल्लाह की रहमत है ना, अपना मुल्क है, गैर मुल्कों में तो ऐसे भी मुल्क है कि वहाँ आपको इजाजत नहीं है किसी बात के करने की, यहाँ तो आप अल्लाह की रहमत से गवर्नमेंट के इस इंस्टीट्यूट में बैठ के ये बात कर रहे हैं, वरना तो यहाँ भी आपको इजाजत ना मिले। क्या आप इस नेमत की कदर जानते हैं, ये कितना बड़ा पैगाम है जो अल्लाह ने आपसे इस जगह पे दिलवा दिया, ये अल्लाह की रहमत है। बिल्कुल इसी तरह से सोचिए, ये एक जुमला लिख लें, जितना ज्यादा ईमान है ना उतनी बड़ी आजमाइश और उतना ही बड़ा इनाम, हम आधी बात लोगों को बताते हैं, हाय नहीं ईमान पे जाओगे ना तो फिर तुम्हें बहुत बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, आधे लोग वहीं से पलट जाते हैं क्योंकि जान प्यारी होती है, कुरान कहता है हसीब अन्नास युतरकुन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, सूरह अनकबूत का मेन थीम ही ये आजमाइशें और दुखी लोग, लेकिन ये लोग नहीं बताते कि जितना ईमान उतनी बड़ी आजमाइश और उसके बाद उतना बड़ा इनाम, इम्पॉसिबल पॉसिबल, नामुमकिनात मुमकिन बन जाती, रास्ते बनते जाते, अल्लाह ताला खुद उस बंदे के मामलात को ले लेता है, बिलाल के लिए कुछ नहीं कर सका उमैया, एक दिन रहमत आलम वहां से गुजरे, बिलाल की मजलूमी देख के तड़प उठे, बहुत दर्द भरे लहजे में कहने लगे बिलाल घबराओ नहीं, अहद अहद जल्द ही निजात देगा, वरका भी नौफल का गुजर होता तो वो कहते बिलाल बखुदा वो एक ही है, वो एक ही है, यानी डू इट कीप इट, जिसको आप कहते हैं ना कीप डूइंग गुड वर्क, और फिर वो जालिमों की तरफ मुतवज्जे होते और कहते खुदा की कसम अगर तुम लोगों ने इसी तरह इसकी जान ले ली तो मैं इसकी कब्रगाह को ज्यारतगाह बनाऊंगा, यानी वो अपने सोच के मुताबिक कह रहे थे, लेकिन बिलाल ये सख्तियां झीलते रहे और सब्र करते रहे, बिलाफर एक दिन फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह हो जिनको अल्लाह ने हर नेकी के लिए चुना हुआ था, जिस नेकी के पीछे हाथ डालेंगे तो अबू बकर खड़े होंगे, यही मुकाम है सिद्दीकियत होता है। एक आध नेकी करके नहीं रुकते और एक दो दिन नेकी करके नहीं रुकते, हर नेकी करते हैं और हर रोज करते हैं। अबू बकर सिद्दीक भैया के पास गए, बोले तुझे जरा भी अल्लाह का डर नहीं है, इस बेचारे को मार डालेगा। वो बोला तुमने ही तो इसको बिगाड़ा है, यानी तुमने इसको बिगाड़ा, ये गलत दीन तुम ही लोग लेकर आए हो, अब तुम ही इसको बचाओ। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे पास एक मुशरिक गुलाम है, तू इसे ले ले और मुझे ये दे दे। बोला चलो मंजूर है, ले जाओ इसे। और इस तरह अबू बकर सिद्दीक ने अपना एक गुलाम उमैया को दे दिया और इससे बिलाल को आजाद करवा लिया। यानी उसके ख्याल में बिलाल अब बेकार हो चुके थे, नऊज़ुबिल्लाह, इतना ग्रज था इस्लाम से। अब उनको ये भी समझ आ गया था कि ये हटेंगे नहीं, तो कहा चलो इसको रिप्लेस कर, जैसे जैसे पुरानी वॉशिंग मशीन निकाल के कोई अपनी ब्रांड न्यू आपको दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा, इस तरह के हालात थे। और अबू बकर ने सिर्फ बिलाल को ही नहीं आजाद करवाया, किनको कराया इसको आगे देखेंगे। आज बस इसी बात पे इक्तफा करते हुए बात करूंगी कि वो यहीं से पलट जाए जिसे जहां हो प्यारी। ये कांटों का रास्ता है, ये फूलों की सेच नहीं है, बाद में बनती है, शुरू में कांटे होते हैं। हाँ वो बेहोशी होती है ईमान की, पता ही नहीं चलता बंदे को, जब नया नया ईमान मिलता है वो तो पता नहीं क्या कुछ कर जाता है। बाद में जब कभी पलट के देखे कहते हैं हाय ये कैसे हो गया। देखिए कभी खुदा ना खासा किसी को डर हो के मेरे पीछे कोई चोर लगा हुआ है तो भागना नहीं शुरू कर देता, घर में कोई सांप बिच्छू आ जाए तो निकल के ऊंची जगह पे नहीं भागेगा। वो कहता है जी मैं तो सीढ़ियां चढ़ नहीं सकती, मेरे तो घुटनों में दर्द। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है, देखिए आपके घुटने सीधे हो जाने, आपने 5 या 4 मिनट के अंदर छत पे पहुंच जाना। खौफ और उम्मीद, लिख लें ये जुमला, दो बातें हैं, दो चीजें बंदे को हरकत पे माइल करती हैं, एक खौफ और एक उम्मीद। खौफ सांप का हो, बिच्छू का हो, चोर का हो, आप बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। जान जाने का डर बंदे को बुखार को कबूल करने के काबिल कर देता है। और उम्मीद किसकी, अभी एक आवाज लगी है कि जो बाहर आ जाए उसको $100 दिए जाएंगे, मिड नाइट डील, एक पिज्जा फ्री और बाय वन गेट वन फ्री। देखे लोग आधी रात जागेंगे, उसके बाद लाइनें लगी होंगी कि कब घड़ी की सुई पलटे और हम यहाँ से जाकर एक फ्री पिज्जा खा लें। ये दुनिया की तलब और ये उम्मीदें होती है ना जिसके लिए इंसान सारा सारा दिन मारा मारा फिरता है। तो आज अगर आपको मुझे इस पारे को पढ़ने के दौरान ये खौफ और उम्मीद, किसका खौफ, जहन्नम का, और उम्मीद किसकी, जन्नत की, अगर ये लग गई तो इंशाल्लाह हमारा ये दौरे कुरान कामयाब है, कुरान तो पूरा हो जाएगा। और आप अगर दिन गिन रहे हैं कि परसों से तो मैं खूब सोऊंगी, तो ठीक है, बिस्मिल्लाह, सोना भी इबादत है, अल्लाह आपको नसीब करे, मैं तो कुछ नहीं कहूंगी। और अभी तक अगर आपने वाकई आगे से अपने लिए कोई रास्ता, लाइन ऑफ एक्शन नहीं सोची, तो आप खतरे में है। इस वक्त जो कैफियत है ये बाद में नहीं रहनी, ये मैं आपको भी तजुर्बे से बता रही हूँ। बारिश हो रही होती है, फर्श गीला होता है, और जब बारिश खत्म होती है चटियल बल्कि और भी ठीकरी बन जाता है। कोई गीली जगह पे बारिश होती है, थोड़ी देर गीला रहता है, एक दो दिन के बाद खुश्क हो जाता है। इस वक्त हमारे दिलों की मट्टी अगर नरम है तो फौरन अल्लाह से कहिए अल्लाह मैं इस किताब को सीखे बगैर चली जाऊंगी। मैं अपने आप से कभी बातें करती हूँ ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ये कुरान कितनी खूबसूरत चीज है। जब किसी के मरने की खबर आती है तो लोग रो रहे होते हैं ना, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, अपने प्यारे होते हैं ना, कोई इसलिए रो रहा होता है कि हाय आगे हमारा क्या बनेगा। लेकिन इस वक्त हमें रोना इस पे चाहिए कि ये कुरान के समझे बगैर मर गया, कुरान पे तदब्बुर और अमल के बगैर मर गया। हाय इसने इतने प्यारा कुरान नहीं समझा, ये फीकी चाय पी के चला गया, इसको इस कुरान की मिठास, इसकी लज्जत तो मिली नहीं। और सच बात है, आप रोज 12 पढ़ लीजिए, पढ़ लेते हैं, सवाब के लिए पढ़ रहे हैं, तजवीद भी बेहतर कर लेंगे, अच्छा ठीक ही पढ़ें तो ठीक है, लेकिन जब समझ आता है तो कुरान को आप नहीं पढ़ते, कुरान आपको पढ़ता है। एक रिवर्ट का जुमला है, उसने कहा कि मैं कुरान क्या पढ़ूं, इससे पहले कि मैं इसको पढ़ूं ये कुरान मुझे पढ़ लेता है, क्योंकि फी ही ज़िक्रुकुम, लगते इसमें तो तुम्हारा जिक्र है। और दुनिया में हर वो चीज हमें अच्छी लगती है जिसमें हमारा नाम हो, और वो भी अच्छे लफ्जों में। अखबार का वो टुकड़ा संभाल के रख लेते हैं, जी ये मेरी खबर छपी थी, किसी बड़े मिनिस्टर बड़े से किसी से कोई मुलाकात हो जाए तो तस्वीर निकाल कर ड्राइंग रूम में दीवार पे लगाते हैं, फला मौके पे यहाँ मिले थे, ताकि किसी बड़े बंदे की गाड़ी से टकरा जाए किसी की गाड़ी तो बड़ी खुशी से कहते हैं फला की गाड़ी से टकराई थी मेरी जो। अल्लाह अकबर कबीरा, वमा कदर अल्लाह हक्का कदरी की तरह, वमा कदर कुरआनन हक्का कदर हो, हमने इस कुरान की वो कदर नहीं की और हमने इस मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी कदर नहीं की कि जिसने अपनी सारी जिंदगी खुलाई, जो हमारे लिए घुले, जो हमारे लिए तड़पे, सारी सारी रात उम्मती उम्मती कहकर गुजार दी, सारी सारी जिंदगी उनको एक ही गम था कि कल मेरी इस उम्मत का हाल क्या होगा। तो जरूरत है इस बात की कि हम समझें। आगे अगर चलें तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अखलाक नबी, अल्लाह के नबी के साथ जो अल्लाह ताला का मामला था उसमें एक बहुत प्यारी बात क्या थी, और वो ये थी कि आपको अल्लाह ताला ने किरदार वो दिया था, पर्सनैलिटी वो दी थी कि जिसमें ग्लैमर था। आज आप किनके पीछे मरता देखते हैं जवानों को, खास तौर पे कोई गुलूकार, कोई अदाकार, उनसे हाथ मिलाने के लिए लोग पागल हो जाते हैं। एक कॉन्सर्ट में कोई आया था नॉर्वे में, मुझे नाम नहीं पता लेकिन खबर बड़ी मारूफ हुई थी, और उसको मिलने के लिए, उसको सुनने के लिए जो यंगस्टर्स आए थे, और एंड पे जो वो जब स्टेज पे आए तो स्टेज का वो जो पूरा तख्त था वो टूट के गिर गया, और वहाँ कितनी मसले हुए, लिफ्टों में लोग फंसे, एक औरत का पाँव काटना पड़ा, आधा पाँव अंदर आधा बाहर था कि जाकर सिर्फ उसको देख ले। ये तो पर्सनैलिटीज आप और मैं सोचते हैं ना, लेकिन असल पर्सनैलिटी उनकी थी, उनके अंदर एक कशिश थी। और याद रखिए कि हक के साथ एक कशिश होती है,